ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये कष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीनैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपालकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराश्रम भागवतम स्कंद 8 अध्याय 10 देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम श्लोक संख्या 26 से 38 क्योंकि 26 से 37 तक श्लोकों में कोई तात्पर्य नहीं है और 38 में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है तो इसलिए श्लोकों का उच्चारण करेंगे। तो ये शीर्षक है देवताओं तथा असुरों के बीच संग्राम और संडे को बिजनेस नाम पर उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था लड़ाई का और क्यों इतना डिटेल के अंदर भागवतम के अंदर लड़ाई का सीन का डिस्क्रिप्शन दिया है। और अभी भी पहले आप अभी तक पढ़ा होगा कि कितने सारे अलग अलग वाहनों के ऊपर बैठ के देवता असुर सब जो है ये लड़ाई करने आए थे और कोई प्रश्न पूछा था कि ये लड़ाई हुई कहाँ पे थी, धरती पे थी स्वर्ग में थी, तो पांचवें आठवें श्लोक के अंदर इसका उत्तर दिया गया। श्वेत क्षीर सागर के तट पर, क्षीर सागर के तट पे लड़ाई हो रही थी और देवताओं और असुरों के बीच में। और अगर पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो बहुत ही घमासान है, मतलब इतना ज्यादा वायलेंस वो भी श्रीमद् भागवतम के अंदर, तो बहुत कभी कभी हैरानी होती है कि क्यों भागवतम में इतना डिटेल में हर प्रकार के विषय के ऊपर इतना डिटेल में चर्चा की है। छोटी मोटी लड़ाई यहां चर्चा भी नहीं की गई, जैसे कि एक और लड़ाई आती है जब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया था तो भी ऐसा घमासान युद्ध हुआ वहां पर, बोले खून की नदियां बह रही थी बिल्कुल और उसके अंदर हाथी ऐसे बड़े बड़े हाथी तैर रहे थे इतना मरे हुए कि जैसे आइलैंड्स हो द्वीपों के बीच के अंदर, और जो उनके कटे हुए हाथ थे वो ऐसे लग रहा था कि मछलियां हैं, एक्वेटिक्स हैं, और धनुष बाण के साथ में, और जो उनके सिर गिरे हुए थे ऐसे लग रहा था उनके बाल वगैरह थे जो घास फूस हैं, मतलब लाखों लाखों शव ऐसे गिरे, मतलब थे मतलब खून की नदियां, ऐसे डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के अंदर। टू वायलेंट, एक बार जब वरिष्ठासुर जब वृंदावन में आया था तब मैंने भक्ति प्रसाद महाराज के मुख से सुना, महाराज ने पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा पहले और बोले भागवतम कैन बी सो वायलेंट, बोले भागवतम में भी इतनी हिंसा हो सकती है, तो वेरी स्ट्रेंज। तो जो है तो एनीवे ये श्लोकों का हम उच्चारण करते हैं। तो मैं पहले 26-37 तक का अनुवाद सबका पढ़ रहा हूं और बाकी 38वें श्लोक का फिर हम उच्चारण करें। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे, वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु, अग्नि, वरुण तथा विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। तो सभी देवताओं के नाम आएंगे कौन किससे डुअल्स के अंदर लड़ाई हुआ वहां पे। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे, वेरी इंसल्टिंग वर्ड, चेस्टाइजिंग वर्ड, कि आज तुम्हें यमराज के घर भेज देंगे और तुमने पहले ये किया था, अब ये किया था, इस प्रकार से। तब वे निकट आकर जोड़े जोड़े में आमने सामने लड़ने लगे, क्योंकि लड़ाई करने के लिए गुस्सा आना बहुत जरूरी है, तो फिर इसीलिए पहले एक दूसरे को गुस्सा दिलाते थे। वैसे तो क्रोध होता ही लड़ने के लिए, लेकिन और ऐसे शब्द बोल के जो है इट इनवोक्स एंगर। हे राजा महाराज बलि इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, वरुण हेति से तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। तो ये उनके ड्यूअल प्लेयर से, यमराज लड़ रहे हैं काल नाभ से, विश्वकर्मा मय दानव से, त्वष्टा शंबर से तथा सूर्यदेव विरोचन से लड़ने लगे। अपराजित देवता ने, ये नाम है अपराजित, ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने वृषपर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए, जिनमें बाण प्रमुख था। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की, वायुदेव ने पुलोमा से तथा शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। हे अरिंदम महाराज परीक्षित, अरिंदम मतलब शत्रुओं के दमन करता, अरि मतलब शत्रु और दम मतलब दमन करता। तो महाराज परीक्षित, कि आप भी शत्रुओं का दमन करने वाले हो, ऐसे शुकदेव गोस्वामी उनको संबोधित कर रहे हैं। शिवजी ने जंब से तथा विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलवल ने अपने भाई वातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मर्ष कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य से तथा शनैश्चर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुद्गण निवात कवच से, वसुओं ने दैत्य कालकेयों से, विश्वदेवों ने पौलोमो असुरों से तथा रुद्र गणों ने क्रुद्ध अर्थात क्रोध के वशीभूत असुरों से युद्ध किया। तो ये सब काफी पॉपुलर नेम्स हैं देवताओं के भी और दानवों के भी, जो और रामायण महाभारत इत्यादि में भी वातापी, इलवल, महाभारत में निवात कवच, पौलोमो, कालकेयो, इन सब का वर्णन पढ़ते हैं 35वें श्लोक के अंदर जो है और 36 के अंदर बताया कि कौन कौन से अस्त्र शस्त्र यूज किए थे उन्होंने। ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगे। उन्होंने भुशुंडी, चक्र, गदा, दृष्टि, पट्टिश, शक्ति, कुलमुख, प्रास, परश्वत, निस्त्रिश, भाला, परिख, मुद्गर तथा भिंदीपाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। तो ये हथियारों के नाम में सुने, हम थोड़ा AK-47 को डायनामाइट ये सुना रहेगा, लेकिन ये उस समय के हथियार थे जिनसे लड़ाई की। तो इसके पूरी जानकारी भी बता रहे थे कि उनको इस चैप्टर का ओवरव्यू के अंदर वो बता रहे थे कि उनको भी नहीं पता ये अस्त्र शस्त्र कौन से होते हैं, लेकिन कह रहे थे कि एक बार वो जयपुर के एक म्यूजियम में गए थे और वहां पे अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे वहां पे। तो बता रहे थे ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र होते हैं कि जब पहले लड़ाई होती थी कि एक अस्त्र क्या करता था, व्यक्ति के कवच को डिस्ट्रॉय करता था और वही अस्त्र बाद में उसका दूसरा पार्ट जो है वो उसको पूरा जो है मतलब व्यक्ति के या शत्रु के आर पार हो जाता था इस प्रकार से। तो अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों के अलग अलग उपयोग होते थे एनीवे। लेकिन ये नाम तो हमारे हमको कुछ पता नहीं, इसमें से गदा और भाला कुछ पता होगा, चक्र दो तीन थोड़े बहुत पता होंगे, बाकी तो नहीं पता एनीवे, बट भागवत में सो डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद में हाथी, घोड़े, रथ, सारथी, पैदल सेना तथा सवारों सहित विविध प्रकार के वाहन टुकड़े टुकड़े हो गए। सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन तथा टांगे कट गई और उनके झंडे, धनुष, कवच तथा आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। फिर आज का श्लोक है, आप तेषं पदाघात रतांग चूर्णिता आयोधनाधुलबण उत्थितस्तदा रेणुर्दिशः खं द्युमणिं चछादयन् रेणुर्दिशः खं द्युमणिं च छादयन् निवर्तसक्तस्त्रपुभिः परिप्लुतात् न्यवर्तत अश्रुतुभिः परिप्लुतात् तेषां युद्ध क्षेत्र में लगे सारे पदाघात असुरों तथा देवताओं के पैरों के प्रहार से रथांग तथा रथों के पहिए चूर्णितात् चूर्णित हुए आयोधनात् युद्ध भूमि से उल्बण अत्यंत शक्तिशाली उत्थितः उठते हुए तदा उस समय रेणुः धूल के कण दिशः सभी दिशाएं खं बाह्य आकाश द्युमणिं सूर्य तक च भी छादयं ढकते हुए न्यवर्तत हवा में तैरना बंद कर दिया अश्रेक रक्त के श्रुतिभिः कणों के द्वारा परिप्लुतात् दूर दूर तक छिड़के जाने से अनुवाद एवं तात्पर्य हिज जीवांग्रेस अभय चंदारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांवों तथा रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल के बादल छा गए जिससे सूर्य तक का सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। तात्पर्य धूल के बादल ने सारे क्षितिज को ढक लिया किंतु जब रक्त की बूंदों की फुहार सूर्य के पास तक पहुंच गई तो आकाश में धूल के बादलों का मंडराना बंद हो गया। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुंच गया बताया गया है किंतु यह नहीं कहा गया है कि रक्त चंद्रमा तक पहुंचा। अतएव स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य है चंद्रमा नहीं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में अन्यत्र बताया गया है। हम इसका उल्लेख कई स्थानों पर कर चुके हैं। पहले सूर्य फिर चंद्रमा तब मंगल बृहस्पति इत्यादि है। सूर्य पृथ्वी की सतह से 9,30,00,000 मील ऊपर माना जाता है और श्रीमद् भागवत से यह पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से 16 लाख मील ऊपर है। अतएव पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी लगभग 9,50,00,000 मील है। इस तरह यदि कोई अंतरिक्ष यान 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करे तो वह 4 दिनों में चांद तक कैसे पहुंचेगा। इस गति से चांद तक पहुंचने में कम से कम 7 मास लगेंगे। अतः यह कहना कि अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चांद तक पहुंच गया है असंभव है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा नैहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरूभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तेषां पदाघात रथांग चूर्णिता दायो दना दुर्बण उत्थित सदा रेणु दुशकम दिमणिम चादयन निवर्तता श्रेक्ष परिप्लता। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांव तथा रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के गण उड़ने लगे और धूल के बादल छा गए, जिससे सूर्य तक का सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदे सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। तो इतने बड़े युद्ध के सीन के बीच के अंदर प्रभुपाद ने कुछ ज्यादा तात्पर्य नहीं दिए, और आठवें और नौवें स्कंद में आप देखेंगे तो फोलियो के अंदर एटलीस्ट प्रभुपाद जी का कोई लेक्चर भी नहीं है। पूरे आठवें कैंटो में पूरे नौवें कैंटो के अंदर प्रभुपाद जी का एक भी लेक्चर नहीं है। और ये श्लोक इस अध्याय के प्रारंभ में पांचवें छठे श्लोक के अंदर इस छठे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने आने वाले पूरे लगभग आठवें स्कंद के लिए एक हिंट प्रदान किया, एक भूमिका प्रदान किया है कि जब लड़ाई चालू हुई तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बिल्कुल प्रारंभ होते एक प्रकोट छठे श्लोक का, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, असुरों तथा देवताओं की लड़ाई निरंतर चलती है, इसे तब तक नहीं रोका जा सकता तब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान पुरुष कृष्ण भावना भावित ना हो जाए। प्रभुपाद जी गिविंग अ हिंट कि चलो देवता को तो फिर भी मान लिया कि कृष्ण भावना भावित हो सकता है, लेकिन कोई असुर आसुर प्रवृत्ति का व्यक्ति असुर तो बोल सकता है मैं कैसे भक्त बन सकता हूं, मैं कैसे कृष्ण कॉन्शियस हो सकता हूं, कृष्ण भावना भावित हो सकता हूं, मैं तो असुर हूं। लेकिन इस स्कंद के अंत में हम देखेंगे कि असुर नहीं, असुर राज बलि महाराज वो जो है भगवान के इतने महान भक्त हो गए कि ऑफकोर्स भक्त तो है ही, वो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वो आत्मनिवेदन पूर्ण समर्पण के आचार्य हैं। बलि भया सखी वयम और द्वादश महाजन में से एक है बलि महाराज इतने अधिक। तो ये एक हिंट प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया कि दोनों पक्षों के बुद्धिमान मनुष्य कृष्ण भावना भावित ना हो जाए, तो वो इंपॉर्टेंट। यहाँ देखते हैं देवता तक ने ऐसे दानव परिवार में इतने महान कि महान महान देवताओं से और भक्तों से भी अधिक महान भक्त बन गए बलि महाराज, भगवान को पूर्ण समर्पण करके। तो ये भूमिका इस अध्याय के अंदर इस स्कंद के अंदर हम देखते हैं। और भी इतने मनमंत्रों के विषय में चर्चा हो रही है, उसका एक मुख्य कारण है कि परीक्षित महाराज जानना चाहते थे कि इन मनमंत्रों में भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय के बारे में कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, कब कब लिए। और ये बहुत ही रुचिकर प्रसंग है, डेविड कैन रिलिश कि भगवान कितने चमत्कारी और कितने महान कार्य करते हैं, भगवान कितने महान हैं। और जब ये प्रसंग समाप्त होगा, इसके अगला अध्याय है जहां पे इंद्र असुरों का संहार करेंगे, और उसके बाद 12वां अध्याय है मोहिनी मूर्ति। और एक प्रकार से समुद्र मंथन का ये पूरा प्रसंग जो है 12वें अध्याय के एंड में समाप्त हो जाएगा, 12वें अध्याय के। और 12वें अध्याय के एंड में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो है इस समुद्र मंथन की जो पूरी लीला का श्रवण करता निरंतर सुनता या सुनाता है उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि भगवान के यश का कीर्तन ही संसार भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। जय श्री राधे भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महाराज की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो और क्योंकि अब इतने सारे अवतार हो गया, सुन रहे हैं कूर्म अवतार हो गया, भगवान का अजीत अवतार हो गया, और भगवान ने गरुड़ मंदर पर तो गरुड़ की पीठ को उठा के रखा, फिर धन्वंतरी का अवतार हो गया, फिर मोहिनी का अवतार हो गया। और जब भगवान ने ऐसे क्योंकि भगवान के भक्त नहीं थे देवता, इसीलिए सॉरी दानव असुर लोग भगवान के भक्त नहीं थे, तो हालांकि इतना प्रयास किया समुद्र मंथन के अंदर लेकिन अमृत नहीं पी पाए, अमृत मिल भी गया लेकिन पी नहीं पाए उसे। और भगवान ने मोहिनी मूर्ति के रूप में सारे देवताओं को पिलाया, तो दानव सब क्रुद्ध हो गए बहुत ज्यादा। वो तो वैष्णव नहीं थे, वो तो नहीं बोले वेरी गुड प्रभु, वेरी नाइस, वी आर गॉड द मर्सी, है ना, ऐसा तो उन्होंने नहीं उनके मन में विचार आया, क्योंकि दानव है तो दूसरे को सफल देख करके निश्चित रूप से वो ईर्ष्यालु और क्रोधित होंगे, और क्रोध में आकर के उन्होंने ये लड़ाई प्रारंभ की। और देवतागण भी उत्साहित हो गए क्योंकि अमृत भी रखा था उन्होंने, तो वो भी जो है दानव से लड़ाई करना शुरू किया। लेकिन आने वाले एक दो दिनों के अंदर जब आप प्रसंग पढ़ेंगे और सुनेंगे तो देखिएगा कि हालांकि देवताओं ने असुरों के देवताओं ने अमृत का पान किया था, लेकिन तो इंद्र बलि महाराज से युद्ध कर रहे हैं तो उनके सारे अस्त्र शस्त्र काट देते हैं, लेकिन फिर बलि महाराज जो है मायावी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो सारे देवतागण जो है बड़े दे बिकम वेरी डिस्टर्ब, बहुत त्रस्त हो जाते हैं बलि महाराज की मायावी शक्तियों के द्वारा। तब फिर वो क्या करते हैं, देवताओं का एक ही उपाय है, क्या, भगवान की शरण ग्रहण करना। तो भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, और उसी समय क्या होगा, भगवान युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो जाएंगे गरुड़ के ऊपर बैठ करके, बहुत ही सुंदर रूप भगवान का। और फिर भगवान स्वयं असुरों का वध करेंगे, काल नेमी और ऐसे असुरों के चार पांच असुरों का वध भगवान स्वयं करेंगे ऐसे, और सारी उस मायावी शक्ति का छिन्न भिन्न कर देंगे। और फिर अगला अध्याय आएगा जिसके अंदर इंद्र फिर असुरों का संहार कर देंगे, बलि महाराज की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बलि महाराज जो है उसके बाद शुक्राचार्य उन कई सारे असुरों को जो है अपनी योग शक्ति से जीवित कर देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रकार का पॉज आ जाएगा इस लीला में, और फिर शिवजी द्वारा मोहिनी मूर्ति जो है वो दर्शन, वो लीला होगा। और उसके बाद में फिर बलि महाराज आने वाले पूरे ये चौथा है पांचवा मनवंतर है, छठा मनवंतर है ये। और फिर उसके अंदर सब मनुओं का बलि महाराज करंट मनु का वर्णन करेंगे, और फिर आने वाले सब जो बाकी सात मनवंतर हैं उनका वर्णन करेंगे, और फिर उसके अंदर बताएंगे कैसे वामन देव ने बलि महाराज से जो है तीन पग भूमि मांग करके उनको ऐसे चीटिंग कर लिया और सारा देवताओं का। तो परशु महाराज क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे, वो क्या जरूरत पड़ी, अभी तो हरा दिया देवताओं ने बलि महाराज को, तो फिर ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि भगवान को वामन के रूप में आना पड़ा और बलि महाराज से इस प्रकार से जो है दान मांगना पड़ा। और तो फिर बलि महाराज, तो फिर शुक्रदेव गोस्वामी फिर पूरे पांच छह अध्याय के अंदर बलि महाराज और वामन देव की लीला का पूरा वर्णन करेंगे। तो भगवान के एक अवतार वामन देव का वर्णन होगा, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि उस लीला आएगी तो निश्चित रूप से हम सब श्रवण करेंगे, लेकिन हमने प्रबोधन महाराज से, प्रबोधन सरस्वती स्वामी महाराज से सुना था कि बलि की शुक्राचार्य ने ही बलि महाराज को जीवन दान दिया था, लेकिन इसके बाद भी बलि महाराज इतने महान भक्त थे भगवान के समर्पण कि जब शुक्राचार्य ने, ही इज रिप्रेजेंटिंग फॉल्स गुरु, जब उन्होंने मना किया बलि महाराज को भगवान विष्णु को आत्मसमर्पण करने से, तो अपने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु का त्याग कर दिया उन्होंने उस समय। तो ऐसे ये लीला का वर्णन आएगा सब। और अभी कोई पूछ सकता है कि इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन क्यों भागवतम के अंदर बारंबार कभी कभी आता है, लड़ाई का डिस्क्रिप्शन, कौन घोड़े पे है, कौन हाथी पे है, किसका वध हुआ, कौन से अस्त्र शस्त्र इत्यादि। तो प्रभा जी एक लेक्चर के अंदर बताते हैं कि ऐसी महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें भी इतना प्रचंड युद्ध था, भीषण घमासान युद्ध था वो, और उसके अंदर भी एरो बाय एरो डिस्क्रिप्शन दिया गया कि इसने ये बाण मारा, उसने वो बाण मारा, इतने लोग मारे गए ऐसे। तो प्रभा जी कह रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिंपली बैटल्स और फाइट्स, हमें ऐसी लड़ाइयों में कोई रुचि नहीं है, लेकिन हम तो इसलिए उसमें रुचि लेते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो सारे युद्ध कृष्ण भगवान से संबंधित है और कृष्ण स्वयं उसके अंदर लीला कर रहे हैं, खुद युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए हमारी रुचि है उसके अंदर। नॉट दैट ऐसे लोग एक्शन मूवीज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें मंडेन एक्शन से या मंडेन वायलेंस से, मंडेन स्टंट से कुछ लेना देना है, लेकिन भगवान के इतने दिव्य कार्यकलाप है और ये रुचि सबके अंदर रहती है। जैसे प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के अंदर प्रारंभ के अंदर ही बताते हैं कि हर किसी को विचित्र स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, अलग अलग कथा सुनना, दंत कथाएं इत्यादि सुनना अच्छा लगता है। तो कृष्णा बुक ऐसा जिसके अंदर आपको सारी ऐसी मनोरंजक लीलाएं भी मिलेंगी और साथ में आपका शुद्धिकरण भी होगा, वो सब कृष्ण संबंधित है। किसी को रोमांटिक मूवी अच्छी लगती है तो कृष्णा बुक से ज्यादा रोमांस नहीं मिल सकता, वायलेंस देखा जाए तो कृष्णा बुक में सर्वाधिक वायलेंस मिल जाएगा आपको। स्टंट्स देख रहे हो तो भगवान से तो स्टंट्स कोई नहीं कर सकता। तो इससे ये सब लीलाएं भगवान इसीलिए करते हैं ताकि उनकी ऐसी लीलाओं को पढ़ करके, सुन करके, श्रवण करके, स्मरण करके हम उनके प्रति आकर्षित हो सकें। ये भगवान की विशेष कृपा है कि उसके अंदर हम रुचि प्रारंभ ले सकें। और नहीं तो भगवान हाफ मैन हाफ लाइन के रूप में आते हैं, तो उसको तो लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, और उसके बाद लोग अपने हाफ बैट हाफ मैन और सुपरमैन और जाने क्या क्या बना लेते हैं, ओकी मैन और के लोग सब। और एनी अलग अलग प्रकार के लोग माता जी बनाते रहते हैं और उनके बारे में जो है श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम कैसे लीलाओं का हम पढ़ करके, सुन करके, श्रवण करके और फिर अपने जो है अपना शुद्धिकरण भी कर सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए दिस पास टाइम था फॉर रिलेशन। और फिर एक प्रश्न आता है कि देखिए भगवान ने तो पूरा अल्टीमेट पॉलिटिक्स भी यहाँ इस लीला के अंदर दिखाई पड़ता है। जो भगवान सिखा रहे हैं कि कितना अधिक क्या सर्प और मूषक न्याय है ना, सांप और चूहे का न्याय। और एंड तक भी देवता क्योंकि भगवान के शरणागत हैं तो भगवान खाली उनको फेवर करते ही रहते हैं ना। तो जब असुरगण सारे वो ले गए, अमृत का पात्र ले गए, तो भगवान मोहिनी मूर्ति रूप में बन के आ गए और सारा अमृत पिला दिया देवताओं को। तो यहाँ पार्शियलिटी किया, फिर यहाँ पे सब देवतागण ऐसे लगेगा कि हार रहे हैं, पराजित होने वाले हैं। तब भगवान स्वयं ही आएंगे गरुड़ पे बैठ के, खुद लड़ाई करने लगेंगे और सारे प्रमुख प्रमुख असुरों को मार देंगे। तो फिर यही प्रश्न आता है बाद में कि क्या भगवान पक्षपात हैं, पक्षपात करते हैं? तो इस अध्याय के प्रारंभ में और 12वें अध्याय के अंत में दोनों का उत्तर दिया गया है। प्रभा जी उसमें अनुवाद में बताया, शुकदेव गोस्वामी ने श्लोक में बता रहे, क्योंकि सब देवता क्या है, भगवान के शरणागत हैं। तो भगवान स्वाभाविक स्वभाव से अपने देवताओं को जो है फेवर कर रहे हैं या देवताओं के ऊपर कृपा दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न आता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, भगवान को शरण लेगा तो वो तो सही पता लगता है कि जो देवता का जो भगवान के शरणागत होगा स्वाभाविक रूप से उसे सारा क्या बोलते हैं सुविधा प्राप्त होगी। और यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। ही विल एंजॉय ऑल ऑपुलेंस यू नो बिकॉज ऑफ बीइंग द ओबीडियंट सन ऑफ लॉर्ड। कि भगवान के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण उसे इस दुनिया में और आने वाले जन्म में, आने वाले अगले जन्म के अंदर, यह लोक पर लोक, इस लोक में दूसरे लोक में, उसे हमेशा सुरक्षा प्रदान होगी, उसे हमेशा विजय प्राप्त होगी, हमेशा उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कि भगवान का भक्त हो सकता है टेम्पररी डिफिकल्टीज में हो लेकिन भगवान की शरणागति लेने से उसको कभी भी असफलता या पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा। टेम्पररीली ही में फाइंड सम रिवर्सल्स लाइक दैट एंड दोज वो रिवर्सल भी इसीलिए होते हैं ताकि वो और भगवान के शरणागत हो सके। भगवान इसीलिए उनके जीवन रिवर्सल देते हैं कि वो और भक्त भगवान के प्रति आसक्त वो भक्त भगवान के प्रति आसक्त हो सके। और 12वें अध्याय के अंत में अंतिम श्लोक के अंदर इसका बड़ा अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है यही श्लोक, क्योंकि ये मेरा भी प्रश्न था कि वाई कृष्ण सो पार्शियल। तो मैं इसलिए सारे पन्ने पलट रहा था देखने के लिए। प्रभुपाद आंसर दिस क्वेश्चन ये कहते हैं, यद्यपि वे सब पर समभाव रखते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समान हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो किंतु तो बता रहे हैं, यद्यपि भगवान सबके समभाव रखते हैं किंतु स्वाभाविक स्नेह के कारण वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। ये स्वाभाविक है। अपना एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, क्या भगवान का यह पक्षपात स्वाभाविक है? हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि भगवान तो देवताओं के प्रति पार्शियल हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की परवाह पक्षपात के कारण नहीं करता, अपितु प्रेम के आदान प्रदान के कारण करता है। बच्चे पिता के स्नेह पर आश्रित रहते हैं और पिता स्नेह से बच्चों का पालन करता है। इसी प्रकार चूंकि भक्त भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, अतएव भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अतएव वे कहते हैं, कौंते प्रजानी नवे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र निर्भीक होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। तो स्वाभाविक है, प्रेम का आदान प्रदान है, भक्त भगवान पर शरणागत है, पूरी तरह आश्रित है। तो भगवान अपने आशीर्वाद करने के लिए जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो ये नहीं बोलेंगे कि अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं इसलिए अपने बच्चे का पक्षपात करते हैं। वो तो स्वाभाविक है, दुनिया में इतने बच्चे हैं, अपने बच्चे का क्यों ध्यान रखते हैं? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ा अटपटा प्रश्न है, ये तो स्वाभाविक है। ऐसे ही जो भगवान के संतान है या आज्ञाकारी शिष्य है तो भगवान उनका स्वाभाविक रूप से ध्यान रखते हैं, बाकी सबका भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सबको ध्यान नहीं रखते, जो नहीं है उनको भगवान सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। खुद परमात्मा रूप में उनके हृदय में आते हैं, सूर्य की रोशनी, हवा, चंद्रमा, वायु इत्यादि सब कुछ उनको प्रदान करते हैं। प्रदान करने वाले भगवान है कि नहीं, तो उनके प्रति संभाव है भगवान वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बिल्कुल डिटैच है, निष्पक्ष है, कोई पक्षपात नहीं करते उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में। लेकिन जो उनकी आश्रय ग्रहण करता है स्वाभाविक रूप से भगवान उसे आदान प्रदान करते हैं, स्नेह का उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति का भरण पोषण करना, उस भक्त का भरण पोषण करना, उस आश्रित का भरण पोषण करना, उसकी सुरक्षा करना, ये भगवान के लिए स्वाभाविक है, ये भगवान का स्वाभाविक इमोशन है। तो सो वी आर इंटरेस्टेड इन सो मच वायलेंस बिकॉज भगवान स्वयं इसके अंदर हीरो बन के हैं। सारी एक्टिविटी में देखेंगे भगवान ही कुरु का रूप धारण करेंगे, भगवान अजीत के रूप में, भगवान ही सारा पर्वत उठाएंगे, भगवान ही लड़ाई करने आएंगे, भगवान ही सारी चाल बताएंगे उनको, सब कुछ करने वाले भगवान ही है। सो डिवोटी इज वेरी एक्सटैटिक, इज डिलाइट्स इन सच पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, हाउ ग्रेट इज माई लॉर्ड, कि भगवान कितने महान है और इतने महान कार्य करते हैं। और ऐसे भगवान के अलग अलग नाम भी इसके अंदर आएंगे, गुरुक्रमा, शार्ग धर्मणि, कि जो भगवान सात धनुष को लेने वाले हैं, चक्रपाणी इत्यादि, ऐसे बहुत सारे जो हैं नाम भी भगवान के आएंगे जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में वर्णन करेंगे। और इसके बाद ये तात्पर्य, प्रभुपाद जी भी जो हैं इज वेरी मर्सीफुल एंड वो जानते हैं किस प्रकार भौतिकता वर्तमान समय में लोगों की क्या अज्ञानता है, उसको उस अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए। तो प्रभुपाद इज वेरी स्ट्रांग ऑन एथिस्टिक फिलोसॉफीज ऑन द करंट टाइम। जैसे पहले समय के अंदर हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं तो उन्होंने मायावाद का बहुत खंडन किया, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि ने, क्योंकि उस समय शंकराचार्य के भाष्य बहुत प्रमुख था, तो उस समय का वो कैटास्ट्रोफ था। फिर भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिंह ठाकुर इत्यादि ने अपसंप्रदायों को जो है का खंडन करके, क्या भांडा फोड़ करके जो है प्रिस्टीन, क्रिस्टल क्लियर जो है एकदम शुद्ध कृष्ण भावनामृत शिक्षा हम तक पहुंचाए, शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्रोसेस हमको पहुंचाया अनअडल्टरेटेड। उसी प्रकार प्रभुपाद जी भी जानते हैं कि वर्तमान समय में किस प्रकार से अलग अलग सो कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरीज के द्वारा लोगों के विश्वास को भगवान के ऊपर से, भगवान के अस्तित्व के ऊपर से हटाया जा रहा है, जैसे कि डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और एक मून लैंडिंग थ्योरी इत्यादि। तो प्रभुपाद जी को जिधर मौका लगता है इग्नोरेंस, तो यही तात्पर्य भी। ऐसे अन्य आचार्यों का तो यहाँ पे कोई खास टीका है नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत डिटेल के अंदर ये परपोर्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग चंद्रमा तक नहीं पहुंचे, ये पहुंचना असंभव है, क्योंकि जब प्रभुपाद जी विधाधाम पे थे उस दौरान ये मून लैंडिंग का जो दृश्य था उसमें बहुत वो था, इट वॉज द टॉक ऑफ द टाउन बेसिकली, वेरी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि 50s जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया तो 50s-60s के अंदर हम जानते हैं यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर चलता था, और दोनों के बीच में एक स्पर्धा थी, प्रतिस्पर्धा थी कि कौन पहले अंतरिक्ष में जाएगा। जिन्होंने इतिहास और साइंटिफिक बैकग्राउंड पढ़ा रहेगा, तो दोनों बहुत प्रोपेगेंडा उनका रहता था, बहुत रिसर्च करते थे दोनों देश विशेषकर कि हम पहले अंतरिक्ष में पहुंचेंगे और इत्यादि। तो 1958 में प्रभुपाद जी ने एक बुक भी लिखी, जब पहला आई थिंक स्पेस पे जाने का जब वो हुआ था, देन प्रभुपाद रोट दिस बुक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई यांत्रिक विधि से, कोई मैकेनिकल प्रोसेस से आप अन्य ग्रहों पर नहीं जा सकते, वहां जाने के लिए आपको कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, योग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी फिर छठे स्कंद से आठवें, छठे अध्याय से आठवें अध्याय से उसमें कोट करते हैं, और खासकर यांति ने बता देवान पितृन यांति पितृवता भूतान यांति भूतेजा यांति मध्यादिनोपिमा, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूत इत्यादि भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं उपासना करते हैं वो मेरे पास निवास करते हैं। तो किसी प्रभुपाद जी ने तभी उस समय पेनिस माइकल जनसोर प्रभुपाद जी रोड दैट लिटरेचर कि इस प्रकार से लोग मैकेनिकल प्रोसेस से वहां नहीं जा सकते, और इसका बारंबार प्रभुपाद जी खंडन भी किया करते थे। और वेदांत में वर्णन आता है कि जब ये घटना चल रही थी तो प्रभुपाद तो बिल्कुल सम टाइम वुड टेक इंटरेस्ट इन दिस एंड सम टाइम वाज वेरी न्यूट्रल एज इफ इट इज एब्सोल्युटली अनइम्पॉर्टेंट। दुनिया ये एकदम ही निराधार सब्जेक्ट मैटर है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, पुरुषोत्तम नाम था उनका, और वो अमेरिकन थे, और उनको बड़ा गर्व था कि अमेरिका जो है स्पेस में लैंडिंग कर रहा है और इतना रिसर्च कर रहा है। और तो सब भक्तों ने देखा, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि चंद्रमा पर नहीं गए लोग, लेकिन इनको विश्वास नहीं था कि ऐसा नहीं, देखो उनको विश्वास था कि नहीं, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो अखबार में आ रहा है, वो सही है बिल्कुल, और हम एक दिन वहां जा सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी इसे नोट किया। तो मैं वही लीला में से एग्जैक्ट जो प्रसंग है उसको पढ़ रहा हूँ। अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दूसरी बार चंद्रमा पर उतरने की तिथि नवंबर के मध्य में निश्चित की गई थी, जिसमें अब केवल कुछ ही सप्ताह रह गए थे। कुछ महीनों से चंद्र पर उतरने की फोटो समाचार पत्रों में काफी छप रही थी। एनीवे जब इससे पहले मैं इस प्रसंग से पहले प्रभुपाद जी के मुख्य दो आर्गुमेंट रहते थे इसके अंदर। प्रभुपाद जी अगर भक्त समाज होगा तो कई बार बहुत बार यही बोलते थे, दे नेवर लैंड ऑन मून, एट मैक्स दे लैंड ऑन सम अदर प्लैनेट, किसी अन्य ग्रह पे उन्होंने लैंड किया, नहीं तो मून पे तो नहीं जा सकते वो। और फिर जो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी है 9 करोड़ 30 लाख माइल्स, और चंद्रमा उससे एक 16 लाख माइल्स और दूर है, तो लगभग 9 करोड़ 50 लाख मील जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, और सूर्य पहले है। और प्रभुपाद जी इसके लिए फिर बोलते, देखो इसलिए पहले संडे आता है उसके बाद मंडे आता है। उसी दूरी के अंदर है प्रभुपाद जी हमेशा से। बहुत बड़ा अब इसमें भी हो रहा है कि तभी पहले सूर्य फिर चंद्रमा तब मंगल बृहस्पति इत्यादि है। बोले तो कॉमन सेंस भी समझ सकता है कि पृथ्वी से सूर्य पहले आता है, सूर्य पे आप नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उपयुक्त तो शरीर नहीं है कि हम सूर्य पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य पे अन्य प्राणी नहीं रहते हैं या अन्य जीवात्माएं नहीं रहती है, लेकिन उस ग्रह पे रहने के लिए उसके उपयुक्त आपके पास शरीर होना पड़ेगा, तब आप रह सकते हैं। और क्योंकि हमारा शरीर इस प्रकार से बना है कि वह पृथ्वी के इस वातावरण में रह सकता है तो सूर्य में नहीं रह सकता, तो जब सूर्य पे नहीं जा सकते, चंद्रमा तो और दूर है, तो आप कैसे जाएंगे वहां पर। तो दिस आर प्रभुपाद वन आर्गुमेंट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। प्रभुपाद सीधा बिल्कुल, प्रभुपाद जी का दृढ़ विश्वास था शास्त्रों के ऊपर और पूरा ज्ञान था, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि वो मून पे कभी नहीं गए, और ये सिंपल लॉजिक देते थे। और कभी कभी प्रभुपाद जी अगर देखते थे तो बोले, इवन इफ दे लैंडेड ऑन मून, कभी कभी प्रभुपाद जी ये लेते थे कि मान लीजिए वो चंद्रमा पे गए भी तो भी क्या महान कार्य किया, वहां से कुछ धूल और कुछ चट्टान इकट्ठे करके ले आए, क्या धूल और चट्टान पृथ्वी पे कम है क्या, तो उसने कोई महान कार्य थोड़ी किया। अगर मानो चंद्रमा पर चले भी गए तो लेके क्या आए। और इनफैक्ट पता नहीं कितना सही है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ भक्तों ने मजाक में बोला सच्चाई थी ये, इसका मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन एक मजाक आप भी हंस सकते हैं मजाक के बाद में, कि कुछ समय बाद इसके जब ये चंद्र मून लैंडिंग हुआ था तो अखबार में जो है कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने चंद्रमा पे प्लॉट्स की सेलिंग करना शुरू कर दिया। तो अभी चंद्रमा पे प्लॉट बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब प्रभुपाद जी के मैं जब इसके ऊपर देख रहा था तो प्रभुपाद जी ने एक और भी चीज बोला उसके ऊपर कि जो है चंद्रमा पे आप आसानी से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पे भी जैसे पृथ्वी पर प्राणी है वैसे चंद्रमा पे अन्य प्राणी है उस ग्रह के ऊपर, तो आप वहां पे वो प्राणी आपको अपने लोक में घुसने नहीं देंगे, जो है वो आपको अंदर घुसते नहीं देंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे उसके अंदर कि जैसे मैं तो एक वीजा फ्लाइट पकड़ के भारत से अमेरिका न्यूयॉर्क आ गया या लंदन आ गया, तो लेकिन आप इसी यांत्रिक विधि से आप दूसरे ग्रह पे नहीं जा सकते क्योंकि हमें यहां से मून का कोई वीजा वीजा नहीं मिलता हमको, तो क्योंकि अन्य प्लैनेट के ऊपर है, तो वो जो चंद्रमा के प्राणी या अन्य किसी ग्रह के प्राणी है वो आपको घुसने नहीं देंगे। और फिर प्रभुपाद जी कहते, एक और कहते थे वो प्रभुपाद जी, तो जब ये आएगा प्रसंग तो फिर प्रभुपाद जी पूछेंगे, तो मैं एग्जैक्ट को पढ़ता हूं आपके सामने। हाँ, जब प्रभुपाद ने चंद्र पर उतरने के प्रसंग को देखने की इच्छा प्रकट की तो भक्तजन एक टेलीविजन ले आए और उसे उनके रहने के कमरे में रख दिया। टेलीविजन के सामने कुर्सी पर बैठे हुए प्रभुपाद नित्य की भांति मालिश कराई। पुरुषोत्तम ने घोषणा की, प्रभुपाद अब समय करीब आ गया है, इसीलिए मैं टेलीविजन चालू करता हूं और शीघ्र हम अंतरिक्ष यात्रियों के कुछ चित्र अंतरिक्ष से देखेंगे। एक संवाददाता कैप कानावरेल फ्लोरिडा से बोल रहा था, हम उस ऐतिहासिक अवसर के कुछ प्रारंभिक चित्र देखने जा रहे हैं। पहले चित्र अस्पष्ट आए, फिर वे स्पष्ट दिखाई देने लगे। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर गया था। जब अंतरिक्ष यात्री यान में से बाहर निकले तो वे धीरे धीरे चंद्रमा के तल पर उतरे। पुरुषोत्तम प्रसन्नता की उमंग में डूब गया। धनंजय पूजे प्रभुपाद जी मसाज कर रहे थे, मैं प्रभुपाद के सिर को की मालिश करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही कार्यक्रम भी देख रहा था। जब अंतरिक्ष यात्री उतर रहे थे तब अचानक प्रभुपाद ने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया, इसलिए उनके सामने आ गया। जो ही मैं बैठा प्रभुपाद मेरे सर की मालिश करने लगे। प्रभुपाद ने उनको पीछे से बुलाया और प्रभुपाद से भी मालिश करने लगे। मैं बिल्कुल घबरा गया और प्रभुपाद ने बोला, तुम भूल गए हो कि ठीक से मालिश कैसे की जाती है। और फिर बोल रही है, ऐसे की जाती है। फिर लगभग 2 मिनट तक मेरे सिर की मालिश करते रहे, तब मैं प्रभुपाद के पीछे खड़ा और उनके सिर की मालिश फिर से करने लगा। उस समय तक अंतरिक्ष यात्री चंद्र तल पर इधर उधर चल रहे थे। अमेरिका का छोटा सा ध्वज निकालकर वे चंद्रमा की जमीन में गाड़ रहे थे और ऊपर नीचे उछल कूद रहे थे। वे स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अवहेलना कर रहे थे, क्योंकि हर बार जब वे ऊपर की ओर कूदते थे हवा में तैरने लगते थे, तब धीरे से नीचे आ जाते थे। वे बड़े प्रसन्न थे और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। प्रभुपाद बोले, पुरुषोत्तम तो वे चंद्रमा पर पहुंच गए हैं? हाँ प्रभुपाद, पुरुषोत्तम उत्साहपूर्वक बोला, वे चंद्रमा पर उतर गए हैं। प्रभुपाद मुस्कुराए। धनंजय, प्रभुपाद ने फिर मुझे आगे आने का संकेत दिया। मैं आगे गया और बैठ गया। मैंने सोचा कि वे चाहते थे कि मैं आगे से उनकी मालिश करूं, लेकिन उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखे और वे मालिश करने लगे। उन्होंने क्या कहा, क्या तुम मेरे सिर की मालिश करने जैसा सीधा साधा काम भी नहीं सीख सकते? मैं टेलीविजन देख रहा था और स्वयं पर ध्यान नहीं लगा रहा था। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद ने फिर कहा, तुम अभी भी नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है। मैं बोला, जी प्रभुपाद, मैं भर से कोशिश कर रहा हूं। वे हंसने लगे और बोले, ठीक है, करते जाओ। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा, तो तुम क्या देख सकते हो? तो पुरुषोत्तम ने कहा, वे चंद्र तल की खोज में लगे हैं। तो वहां क्या है? जी, ऐसा लगता है कि वह कहीं किसी गड्ढे के अंदर उतरे हैं और वहां की जमीन रेतीली और कुछ चट्टानों वाली है। ओ देखिए, वे इधर उधर पड़ी कुछ चट्टानों की छाया दिखा रहे हैं। तुम इतना ही देख सकते हो ना? वहां मनुष्य नहीं है, वृक्ष नहीं है, वहां नदियां नहीं है, मकान नहीं है। नहीं, पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, चंद्रमा वीरान है। प्रभुपाद ने जोर देकर कहा, वे चंद्रमा पर नहीं उतरे हैं, यह चंद्रमा नहीं है। बाद में मालती प्रभुपाद के लिए दोपहर का भोजन ले आई। वे बोले, मालती ने कृष्ण के लिए यह थोड़ी खिचड़ी बनाई है और यह जो उन लोगों ने किया है, अर्थात जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स ने किया है, उससे कहीं अधिक महत्व की है। प्रभुपाद बोले, टू मेक खिचड़ी फॉर कृष्ण इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग ऑल द एफर्ट्स ऑफ लैंडिंग ऑन मून। वैसे प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे जब हुआ, और प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखो, अगर इस पृथ्वी पे भी बहुत सारे वीरान जगह है कि कोई डेजर्ट एरिया है, वहां पे कोई नहीं रहता, कई सारे ऐसे एरिया हैं, और मान लीजिए किसी अन्य ग्रह से कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है या आप वहां लैंड करते हो और वहां देखते हो कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पूरा डेजर्ट है, ना कोई पेड़ है, ना कोई नदी है, ना कोई जलचर है, थलचर है, ना कोई मनुष्य है, तो और आप ये निष्कर्ष निकालो कि पृथ्वी वीरान है, पृथ्वी पे कोई नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं है, तो ये गलत निर्णय, गलत निष्कर्ष होगा। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे किसी पता नहीं कहां, जहां पर भी पहुंचे हैं, कोई वीरान स्थल है, और उसके बाद निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि चंद्रमा के ऊपर कोई नहीं है। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज, चीटिंग प्रोपेगेंडा। वो चीटिंग कर रहे हैं, उनका ज्ञान अपूर्ण है और बाद में चीटिंग करने के लिए। अभी तो सब जानते हैं, खैर अधिकांशतः साइंटिस्ट भी और साइंटिफिक कम्युनिटीज भी ये बिलीव नहीं करती, दे प्रूफ्स कि ये सब एक मून लैंडिंग थ्योरी, एक होक्स था, एक दिखावा था केवल। लेकिन प्रभुपाद जी का जो विश्वास और हम भक्तों का विश्वास इसलिए नहीं होना चाहिए कि आज 40 साल बाद साइंस उसका खंडन कर रही है। हमारा विश्वास इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है ये, तो शास्त्र की बात अकाट्य है क्योंकि वो अपौरुषेय है, वो किसी मंडेन किसी मॉर्टल व्यक्ति के द्वारा, जिसके अंदर ये 4 त्रुटियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां और धोखा देने की प्रवृत्ति और मोहित होने की प्रवृत्ति और इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू चीट और गलती करने की प्रवृत्ति, ये चार जो दोष हैं ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया जो वैदिक साहित्य है, वे पूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचन हैं, तो हम भक्तों का विश्वास इस पे पूरा होना चाहिए। और ये तात्पर्य प्रभाव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऐसी अज्ञानता, और उस अज्ञानता से भी आसक्ति रहती है कि जो हमने बचपन में अपने स्कूल के अंदर साइंटिफिक थ्योरीज, सो कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ी हैं, उन पर बहुत विश्वास रहता है। और ये विश्वास के द्वारा जब हम शास्त्रों में ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं कि ये ग्रह है, श्वेत द्वीप है और कुछ सुमेरु पर्वत है और इत्यादि इत्यादि, तो उस पर विश्वास नहीं, हमें लगता है कि ये कपोल कल्पना है, ये एक माइथोलॉजी है। पर वास्तविकता के अंदर जो आज हम पढ़ते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, केवल अनुमान के आधार पर कुछ लोगों ने लिखा है, उसको हम सत्य मान लेते हैं। और कई बार भक्ति में आने के बाद भी, कई कई साल तक भी हम देखते हैं ऐसी अटैचमेंट्स रहती हैं। एज डिवोटीज वी शुड वेरी अटैच्ड टू, सॉरी, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ एंड कन्विक्शन इन शास्त्र, शास्त्रों के ऊपर कि शास्त्र वचन अकाट्य हैं। हो सकता है हमें वो समझ ना आ रहे हैं, वो एक बात है, लेकिन वो सही है और गलती केवल मेरी सीमित बुद्धि के अंदर, जिसको मैं समझ नहीं सकता। तो ये विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो चौथा नाम प्राप्ति है, और दूसरा, ये शास्त्र में या गुरु पे जब हमें संदेह होगा तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद हमारा भक्ति के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा, भक्ति की विधियों पे हमारा विश्वास उठने लगेगा, डगमगाने लगेगा। तो विश्वास बहुत आवश्यक है। और जस्ट टू कंक्लूड विद, इससे थोड़े दिन पहले प्रभुपाद जी पुरुषोत्तम से कैसे डील किया करते थे, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि लॉस एंजलिस में उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू में यह उत्तर दिया था, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान को मोटर कार या वायुयान द्वारा जाते हैं, उस तरह की कोई यांत्रिक विधि चंद्रलोक तक पहुंचने में हमारी सहायता नहीं करेगी, वह विधि भिन्न प्रकार की होगी, जैसे कि वेदों में वर्णित है। इसके लिए हमें योग्य बनना होगा, हमारे साहित्य और हमारी जानकारी के अनुसार यह संभव नहीं है, इस शरीर से हम वहां नहीं जा सकते। आजकल के जो प्रयास है चंद्रमा पे जाने के और अन्य जगह पे जाने के, ये प्रयास उसी प्रकार से जैसे कौन था रावण था जो स्वर्ग लोक को सीढ़ी बना रहा था कि बिना कोई पुण्य कर्म किए व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ के मैकेनिकली ऊपर जा सकता है। तो आजकल के वो और भी एडवांस हो, तो बहुत सिंपल विधि से हर कोई चढ़ के जा सकता है। अभी तो फिर भी स्पेस एस्ट्रोनॉट ये सब करना पड़ेगा आपको, तो और सिंपल विधि रावण सोच रहा था, तो ये रावण मेंटेलिटी है। तो प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप करते हुए कई बार ये कहते थे, चंद्र अवतरण एक धोखा है। तो एक दिन कमरे में शाम को उन्होंने कहा, क्यों धोखा है? क्योंकि वो चंद्रमा पर नहीं जा सकता। चंद्रलोक देवताओं का निवास स्थान है, जो वहां बसने की कोशिश करने वाले इन पियक्कड़ों और गोमांस भक्षी हथियारों से ऊंचे जीव हैं। इस यात्रा के लिए अनुमति की तुम कल्पना नहीं कर सकते। यह यात्रा उस तरह की नहीं है जैसे मेरी भारत संयुक्त राज्य की यात्रा, चंद्रलोक की यात्रा अपनी शीघ्रता से नहीं हो सकती, यह संभव नहीं है। एंड प्रॉपर की स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो कि 18,000 मील पर माइल्स पर आवर की स्पीड से अगर कोई वायुयान चलेगा, तो मैंने कैलकुलेट किया कल एक्चुअली, तो इट टेक्स 219 डेज, 219 दिन लगेंगे आपको ये डिस्टेंस कवर करने में, 9,50,00,000 माइल दूर करने के अंदर। तो अगर 4 दिन के अंदर आप वहां नहीं पहुंच सकते, अगर उस स्पीड से भी चलोगे तो मिनिमम इट्स गोइंग टू टेक 7 मंथ्स। फिर तो प्रभुपाद जो है, सब शिष्य तो विश्वास करते थे कि प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो सत्य है, शास्त्र पर आधारित है, लेकिन पुरुषोत्तम जो प्रभु थे उनको विश्वास नहीं था। तो प्रभुपाद आए मजाक करते थे, किसी ने प्रश्न पूछा कि जानकी माता जी कहाँ है, तो प्रभुपाद कहते हो जानकी चंद्रमा पर गई है, तो सारे हाथ में लगते गए पुरुषोत्तम के अलावा। तो भक्त सब समझते थे कि पुरुषोत्तम जो एक अमरीकी थे, गर्व थे कि लोग अंतरिक्ष विजय यान कर रहे हैं, और वो जानते थे कि प्रभुपाद जो है इस विषय मजाक करते हैं। तो फिर प्रभुपाद, हालांकि पुरुषोत्तम अपने सेवाएं कर रहे थे, लेकिन वे बहुत ही अनएंथुसियास्टिक हो गए थे, बहुत उदासीन हो गए थे, और प्रभुपाद ने भी उनके उत्साह के अभाव को देखा, नोटिस किया। तो एक दिन यमुना देवी माता जी और पुरुषोत्तम प्रभु दोनों कमरे बैठे थे, तो कई दिनों से पुरुषोत्तम प्रभु की दाढ़ी बड़ी थी, और प्रभुपाद ने देखा कि जिस रात को पहन के वो स्वेटर पहन के सोए थे, वही स्वेटर, ऑरेंज कलर के स्वेटर उन्होंने अभी भी पहना हुआ था, तदमुची था, वो कंटेमिनेटेड था। और यमुना माता जी के पास ऐसा लिखा, हालांकि दो ही साड़ी थी, लेकिन हमेशा धुली हुई फ्रेश और प्रॉपर आयरन की भी साड़ी पहना करती थी वो। तो प्रभुपाद ने दोनों की ओर देखा और प्रभुपाद ने बोला, यमुना तुम्हारे पास इतनी अधिक सूती साड़ियां हैं, वे सभी कितनी सुंदर हैं। तो यमुना ने देखा, यमुना माता ने प्रभुपाद को देखा, बोला मेरे पास बहुत साड़ियां नहीं है श्रीला प्रभुपाद, नहीं तुम हर रोज नया वस्त्र पहनते हो, यह बहुत अच्छा है, तो हमेशा बहुत साफ सुथरी दिखाई देती हो, तिलक लगाई जाती हो। पुरुषोत्तम तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारे विचार से सबसे तिलक किसका है? तो पुरुषोत्तम ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुंदर तिलक का अर्थ सुंदर व्यक्ति, प्रभुपाद ने कहा। उसी शाम को 6 बजे यमुना प्रभुपाद के लिए पूड़ियां और आलू पका रही थी, जब प्रभुपाद उसने प्रभुपाद के सेवक को बुलाने के लिए घंटी बजाते सुना, तो माता जी कुकिंग कर रही थी, तो प्रभुपाद ने अपनी बेल रिंग की तो वो घी को आग पे छोड़ के प्रभुपाद कमरे की ओर चली गई। तो फिर प्रभुपाद से बातचीत की, पूरा दर्शन था प्रभुपाद का, और एंड में प्रभुपाद ने पूछा कि प्रसाद कब तैयार हो जाएगा, क्या मेरे शाम के इवनिंग का जो प्रोग्राम है उससे पहले हो जाएगा? तब उनको ध्यान आया, अरे वो तो गैस के ऊपर घी चढ़ा के आई हूँ, और तभी स्मेल भी आने लगा। बोले तो प्रभुपाद मुझे क्षमा कीजिए, और वो भागी बिल्कुल। जब वहां गई तो पूरे किचन के अंदर धुआं धुआं हो गया और वो स्टोव नहीं देख पाए, तो वो चिल्लाए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम पहुंच गए, दोनों धुएं के अंदर देख रहे कि कहां पे स्टोव है, कहां से बंद किया जाए। फाइनली पुरुषोत्तम ने जब बंद कर दिया तो दोनों एकदम धुएं से काले हो गए, काले ढक गए, तो और उनका स्वेटर कपड़े सब कुछ काले हो गए बिल्कुल। तो प्रभुपाद ने फिर अपने जब घंटी बजाई तो दोनों उसी रूप में प्रभुपाद जी के पास पहुंचे। तभी वहां पे मालती माता जी पहुंची, जब सॉरी जानकी माता जी जब पहुंची तो वो जब देखा उन दोनों को तो बोले ये क्या हो गया, और प्रभुपाद ने बिल्कुल सिंपल देखा, बोले आज पुरुषोत्तम चंद्रमा पर पहुंच गया है। तो जानकी माता जी ने पूछा क्या, प्रभुपाद अपनी बात दोहराई, हाँ पुरुषोत्तम चंद्रमा पर पहुंच गया है। तो पुरुषोत्तम उनको बड़ा जो है इंपेलमेंट एम्बेरस था, बोला प्रभुपाद मैं एक ब्रह्मचारी हूं, आप ये बातें क्यों करते हैं मेरे साथ? और प्रभुपाद ने फिर उनको और खींचते हुए बोला, ब्रह्मचारी होना चंद्रमा पर जाने में बाधक नहीं है, कोई भी जा सकता। तो प्रभुपाद मेड लिटरली फन ऑफ दिस थिंग। ऑफ कोर्स वी नो इवेंचुअली पुरुषोत्तम कुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट। उससे ये शिक्षा मिलती है हमको कि इस प्रकार से जो है हमको शास्त्र में विश्वास होना चाहिए और वरिष्ठ भक्तों से जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए। जिस प्रकार प्रभुपाद जी के शिष्य सदापुत्र प्रभु द्युतकर्मा प्रभु इत्यादि बहुत सारे बुक्स लिखे हैं साइंटिफिक रूप से थ्योरी से खंडन करते हुए, अदरवाइज तो विज्ञान में भी वैज्ञानिक समाज के अंदर भी इतना सारा ढकोसला है, और पूरे इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा जो है बहुत सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट हमारे विश्वास को वैदिक साहित्य के ऊपर या भगवान के अस्तित्व के ऊपर करने के लिए किया जाता है। सो एथिज्म इज अ बिग प्रोपोगेंडा, वेरी सिस्टमैटिक प्रोपोगेंडा है ना, किस प्रकार से धीरे धीरे लोगों का बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से उनका ब्रेन वॉश किया जाए। तो हमारा कर्तव्य भक्तों के रूप में कि प्रचार करें, इस सिद्धांत को समझें और दूसरे लोगों की भाषा में इसको पहुंचा सकें कि नहीं वास्तविक जो विज्ञान है वो कृष्ण भावनामृत है, वो श्रीमद् भागवतम और ग्रंथों के अंदर है। और फाइनली प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने बोला, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें पूरे विश्व को कॉन्कर करना है, को कृष्ण महानाद बनाना है। तो एक बार किसी शिष्य ने पूछा प्रभुपाद, इफ द एंटायर वर्ल्ड विल बिकम, इफ दिस प्लैनेट विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस, व्हाट वी विल डू? प्रभुपाद सेड वी विल गो टू मून एंड प्रीच। प्रभुपाद जी ने बोला कि हम दूसरे लोग हैं, चंद्रमा पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे और वहां प्रचार करेंगे। इससे तो है प्रभुपाद जी की प्रचार की भावना एवे जज भूषु त्रिभुवन, कि तीनों लोगों के अंदर प्रभुपाद चाहते थे कि सबका उद्धार हो। तो हमारा वो तो एक्सेस नहीं है, लेकिन हम सब जगह बद्ध जीवों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और कम से कम जितना हमारा सामर्थ्य हो क्षमता हो उसके अनुसार प्रचार कर सकते हैं कि लोगों की अज्ञानता दूर हो। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, पिता गौर प्रेमानंदे। समय अधिक हो गया, किसी का कोई प्रश्न हो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।